ओम शांति। खुशी वाले प्रोजेक्ट में पहुंचे हुए खुशनुमा आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो खुशी हम सभी ब्राह्मण जीवन का श्वास है, या ये कहेंगे कि खुशी के बिना ब्राह्मण जीवन ही नहीं, खुशी का हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता। जो खुशनुमा नहीं है वो योगी भी नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए इस खुशी को अपने जीवन में बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, और इतना बढ़ाने के लिए कि हम सभी को खुशियां देने के निमित्त बन जाएं, उसके लिए ही इस प्रोजेक्ट में हम सभी मिलकर पुरुषार्थ करेंगे। तो हमारा मंच भी सजा हुआ है इस खुशी के प्रोजेक्ट के जो लीडर्स हैं, है ना, आदरणीय अलका दीदी जी, जो इस प्रोजेक्ट का इंजन भी कह सकते हैं, जो इस उनके ही मार्गदर्शन से हम इस प्रोजेक्ट में बहुत पुरुषार्थ करेंगे। न सिर्फ पुरुषार्थ करेंगे, परंतु जैसे बाबा कहते हैं कि चेहरे और चलन से भी बहुत सेवाएं हो सकती हैं, तो बाबा के बच्चे अपने चेहरे को ऐसा खुशनुमा बनाएंगे कि केवल चेहरा देखकर भी कोई अपने जीवन के दुख दर्द भूल सके। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय दीदी जी को, अलका दीदी जी को, कि वो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे।
ओम शांति। तो जो सभी यहाँ पहुंचे हैं, सब अपने आप को बाबा का वो एक सुंदर टाइटल याद दिलाना। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि आप बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो, तो यहाँ सब बैठे हुए कौन है? सब बेगमपुर के बादशाह बैठे हैं, मनाए बादशाहों की दरबार लगी हुई है। तो ये स्वमान में बाबा ने दिलाया हुआ है, और संगम पर बाबा ने ऐसी दुनिया हमको बना के दे दी है। बल बाहर कलयुग की दुनिया है, कांटों का जंगल है, बाहर कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने दुख की दुनिया में भी सुख की अनुभूति करने के लिए अपना बना लिया है। बाहर गम की दुनिया है, बाबा ने हमें बेगम बना दिया है। तो ऐसी संगम युग के अंदर हम बच्चे अपने आप को सदैव प्रेजेंट रखें, क्योंकि हम संगम युग से कई बार कलयुग में चले जाते हैं। कैसे चले गए पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कलयुगी संस्कार हमारे साथ है। अभी तक उन संस्कारों ने विदाई हमारे से नहीं ली हुई है, और वो संस्कार हमें सेकंड में युग परिवर्तन करा देते हैं। और अभी संगम पर थे, दूसरे सेकंड में कलयुग चले गए, क्योंकि हमने कलयुग के संस्कार को इमर्श करके, यूज करके पार्ट प्ले किया। जैसे बाबा बच्चों के लिए कहता है कि अगर जो बच्चा बाबा के ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर नहीं चलता है, तो कई बार वो उनकी दुनिया से कंप्लेंट आती थी बाबा के पास कि बाबा ये तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी दुनिया में है, और ये हम तो देख रहे कि ये ऐसे करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, आपस में ऐसा करते। अच्छा, बाबा के पास वो कंप्लेंट आती तो बाबा ने कहा बच्चा वो मेरा बच्चा ही नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान उस खड़ी कहें कि ये मेरा बच्चा ही नहीं है, जब वो कलयुग के संस्कारों को कलयुग की दुनिया में यूज कर रहा है। लेकिन हम बच्चों को रहना भले कलयुग की दुनिया में है, यूज करना है हमें संगमयुग के अपने संस्कारों को। तो संगमयुग में बाबा ने हमें अपने निजी संस्कारों की स्मृति दिलाई है, आदि संस्कारों की स्मृति दिलाई है, अनादि स्वरूप की याद दिलाई है, और यही हमारा संगमयुग का प्रेजेंट जीना है। तो इस समय पर जितने इन स्मृतियों में हम रहते हैं, उतना ही हमारे द्वारा जो हमारा पार्ट प्ले हो रहा है वो बहुत सुंदर होता है। और जब हम देखते किसी का बहुत अच्छा पार्ट लगता है, कोई हम ड्रामा देखते, कुछ कल्चर देखते हैं, तो हम कहते वंस मोर। तो हम तभी उनको कहते हैं कि ऐसा पाठ दोबारा बजे। अगर हम अपने दैवी संस्कारों को प्रयोग में लाते हैं तो जरूर है कोई भी हमारे संग में दोबारा आने के लिए तैयार हो जाएगा, दोबारा हमारे साथ वो सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा, दोबारा हमारे साथ ये ईश्वरी जर्नी करने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं तो हम पुराने संस्कारों को जब भी यूज कर लेते हैं तो वातावरण को खराब कर देते हैं। तो जब कोई कमजोर संस्कारों को या पुराने संस्कारों को यूज करता है और जब हम बच्चे उनको देखते हैं तो कई बार उनको देखने के बाद जीवन के अंदर निराशा उत्पन्न होती है कि ये अभी तक ज्ञान में चलते हैं, ये अभी तक ऐसे हैं, हमारा क्या होगा, हम तो अभी नए नए हैं तो ये तो पुराने हैं, फिर हमारा क्या होगा। तो उनको अपने लिए चिंता बन जाती है, लेकिन वास्तव में चिंता का ये सब्जेक्ट नहीं है। बाबा ने इसलिए हम बच्चों को बहुत सारी बातें बता दी है, कार्मिक अकाउंट की बातें बता दी। हर आत्मा के ऊपर अपने अपने पांच कर्मों का बोझ है, उस अनुसार वो आत्मा अपने आप को इस कर्म बंधनों से मुक्त करके संगमयोग पर ले आती है। तो ये सारी बातों की नॉलेज को बुद्धि में रखते हुए अब हमको पुरुषार्थों को आरंभ करना है। जैसे बाबा ने ड्रामा में याद दिला दिया है तो वैसे कई बातें हैं जिसको बुद्धि में रखना है और हमें अपने खुशी को कायम करना है। कुछ भी हो जाए, ये स्लोगन पक्का करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए। तो एक बहुत बड़ा व्रत है, एक बहुत बड़ा बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए ये हमारी प्रतिज्ञा है। क्योंकि बाबा ने कहा आपका चेहरा और आपकी चलन जो है यही बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली है। प्रत्यक्षता और क्या करे, किसके द्वारा होने वाली है। एक तो सेवा का समय था जब बाबा कहता था ये मेला, प्रदर्शनी, म्यूजियम, ये सब सेवा करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आप बच्चे ही चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ। तो वो म्यूजियम से भी अभी कौन सा म्यूजियम ज्यादा काम करेगा, वो म्यूजियम तो एक स्थान पर बना होगा लेकिन कई वर्षों से लोग देख गए होंगे, कहेंगे वही म्यूजियम है, बहुत समय से देख रहे हैं, हम क्या करेंगे म्यूजियम में, हर साल उसके ड्रेस ही बदली करेंगे, बस उतना ही करेंगे, कलर चेंज करेंगे कपड़ों का, लेकिन बस तो वही है, वही लोग देख रहे हैं। तो वो भी अभी सर्विस का साधन अभी फीका हो रहा है। अभी बाबा के इस समय के लिए इशारा है कि बच्चे आप ही खुद ही क्या हो, चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ। तो माना हम जहाँ जाएंगे वहां हम बच्चों को सेवा करना है और वो सेवा हमारी चेहरे से होने वाली है और वो हमारा चेहरा होना चाहिए खुशनुमा। क्योंकि दुनिया में हम जीते हैं, दुनिया को सब पता है, कि हमारे पास भी क्या क्या परिस्थिति आ रही है, हम भी जीने मरने के बीच में चल रहे हैं, हमारे पास भी क्या चल रहा है, सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन वो सब जानने के बाद भी अगर वो देखते हैं कि ये बहुत खुश है, उनमें और हमारे में कुछ अंतर उनको महसूस होता है कि यही परिस्थिति हमारे पास थी तो हमने क्या किया और यही परिस्थिति इनके पास आई है तो ये कैसे है, तो वो उस समय पर तुलना जरूर करते हैं और तभी हमारी स्थिति के द्वारा हम बाबा की प्रत्यक्षता करते हैं। और ऐसे स्थिति में रहने के कारण कई बार बाबा के बच्चे भी बन जाते हैं। वो स्थिति अपने आप ही सेवा कराती है, किसी को बाबा का बनाने के लिए वो निमित्त बन जाती है। तो इसके लिए हमें खुशी को अपने अंदर धारण करना है। तो आज खुशी की तो बहुत सारी बातें हैं, आपके पास भंडार भरा पड़ा है क्योंकि बाबा ने खुद ने सागर ने इतना भंडार दे दिया हम बच्चों को। तो उस भंडार से अभी हमको अपनी आपकी पालना करनी है। पॉइंट्स तो हमने बहुत सुने हुए हैं लेकिन अभी पॉइंट स्वरूप बनते जाना है। क्योंकि खुशी को बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की श्वास है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी जरूरी चीज है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं है, तो वैसे खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। तो ये ब्राह्मण जीवन के लिए खुशी बहुत बड़ी जरूरत की चीज है। जैसे दुनिया में भी कहा खुशी हमारे लिए खुराक है, लेकिन खुराक तो बाबा हमें रोज इतनी सुंदर दे रहे हैं, तो फिर भी अगर हम खुश नहीं रह रहे हैं तो जरूर हमारा कार्मिक अकाउंट बड़ा पावरफुल है, और उस कार्मिक अकाउंट को समाप्त करने के लिए फिर हमें बाबा ने योग का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो हम अपने योग के प्रयोग को करते चले और अपने खुशी को बना के रखें कि चाहे सब कुछ मुझे मिल रहा है, सेंटर मिला, मुरली मिली, सब प्रबंध मिला, सब कुछ सुविधाएं मिली, घर में चाहते हैं कि हमारे घर में ये बन जाए, बाबा का रूम बन जाए, वो प्रबंध हो जाए, कोई कहे हमारे घर में ये सुविधा हो जाए, ड्रामानुसार सब सारे संकल्प पूरे हो जाते हैं संगम युग में, लेकिन फिर भी खुशी नहीं आती है। तो ये खुशी कहाँ से आएगी? कमरा बनाने से आ जाएगी? घर में बाबा का कमरा बना दिया तो हम खुश हो गए? तो ये हमारी सब स्थिति के ऊपर बात है, क्योंकि ब्रह्मा बाप को हम सभी ने देखा कि कुटिया में बैठकर बाबा ने अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था बनाई है। ये तो सारे स्थूल साधन है सेवा के लिए है, लेकिन स्थिति नहीं अगर अच्छी हमारी तो ये साधन भी कोई काम के नहीं है। भले कितना सुंदर बाबा का कमरा बनाया हुआ हो और उस कमरे में जाने के लिए हम अमृत वेले उठ ही नहीं रहे तो वो कमरा किस काम का है? हम सोच रहे थे कमरा बन जाएगा तो हम बहुत अच्छा योग करेंगे, तो वो थोड़े समय के लिए हम अपने मन को, वो माया बहुत अच्छी तरह से हमारे से भाषण करती है, कहती कमरा बन जाएगा ना फिर तुम्हारा बहुत अच्छा योग होगा, फिर कमरा बनने के बाद फिर वो दूसरा और संकल्प दिलाती है और वो भी पुरुषार्थ नहीं होती है। तो माया के ऐसे रॉयल प्रलोभन भी हमको बहुत संगम युग पर मिलते हैं, ये हो जाएगा तो हम योग करेंगे, ये हो जाएगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी अगर पुरुषार्थ नहीं है तो जरूर सोचो कि माया मेरे ऊपर राज्य कर रही है, और दूसरा सब कुछ मिलने के बाद भी खुशी नहीं है तो मेरा कार्मिक अकाउंट बड़ा कड़ा बना हुआ है जो उसको मुझे खत्म करना है। तो ही हम अपने आप को ही जाने पहचाने, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम अपना पुरुषार्थ करा ले, और ऐसे संगम युग पर बाबा ने हमें साथ दिया हुआ है, ऐसे युग में बाबा हम बच्चों के साथ है कि जिस समय पर दुनिया के अंदर कई प्रकार की अप्राप्तियों का अभाव है जिसको कोई भी भर नहीं सकता है, और वो सारी अप्राप्तियां यहाँ बाबा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ लेते हैं और वो उन प्राप्तियों का अनुभव कर लेते हैं। जैसे एक बार मुझे याद आ रहा है कि बाबा के सामने एक माता मिलने आई थी, अब एक तो बाप दादा से मुलाकात कर रही थी और उसी समय पर उसके पति ने शरीर छोड़ा था, वो बाबा से मिलने आई थी। तो बाबा ने बहुत सुंदर उसको शक्तिशाली दृष्टि देते हुए कहा कि तुम तो अमरनाथ की पार्वती हो। तो जैसे बाबा ने उसको अमरनाथ की पार्वती कहा गया तो दुनिया तो सारा उसी दृष्टि से देखना शुरू करती है कि इसका पति गया माना ये तो विधवा हो गई है, लेकिन बाबा ने उसको कहा कि तुम तो अमरनाथ की पार्वती हो, तुम्हारा पति तो अमर है, वो सदा तुम्हारे साथ में है। तो कैसी बाबा ने हमारी अविनाशी खुशी बनाने के लिए अविनाशी संबंध जुड़वा लिए हैं, और इन अविनाशी संबंधों को अगर हम सदैव बाबा के साथ जोड़ के रखते हैं तो ऐसी कई परिस्थितियां भी आती है संसार के अंदर तो हम बच्चे बाबा के साथ होने के कारण हमारी खुशी बनी रहेगी। तो आज हम कुछ आपसे लेना चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी बातें आज बताइए कि खुशी गुम कब होती है और खुशी गुम होने के बाद उसको लाना है तो फिर क्या करना चाहिए। तो भी हम आपस में करेंगे, एक ग्रुप जो है एक तरफ से अगर जवाब आता है कि ये खुशी गुम होने का कारण है तो दूसरा उसमें जवाब दे सकते हैं कि उसको लाना है तो क्या किया जाए, करें ऐसा खेल। तो आपस में आपको ही जवाब देना है, आपको इधर से प्रश्न आएगा इधर से उत्तर देना है, इधर से प्रश्न आएगा तो इधर से उत्तर देना है, चलेगा ना? अगर भाइयों की तरफ से आ रहा है खुशी गुम होने का तो यहाँ से जवाब आएगा खुशी प्राप्त करने का क्या करना है, यहाँ से गुम होने का आएगा तो यहाँ से प्राप्ति का रास्ता बताएंगे, चलेगा? चलो फिर हम शुरू करते अभी। तो आप सब अनुभवी हैं और ये सारे पॉइंट्स हम नोट करेंगे और इसी के ऊपर फिर हम ये सारा साल भर चलाएंगे, जो भी हम सभी पॉइंट्स निकालेंगे तो हमारे सामने एक चित्र तैयार हो जाएगा कि क्या हो रहा है इस खुशी के लिए, क्या करना चाहिए हमें पुरुषार्थ, तो हमें पुरुषार्थ की गाइडलाइंस बनाने के लिए स्पष्टीकरण हो जाएगा।
आगे
थोड़ा आगे आ जाए बताने वाले, माइक की वायर थोड़ी लंबी नहीं जाएगी। खुशी गुम होने का कारण बता सकते हो? पहले क्यों गुम होती वो बताइए, तो दूसरा उसका जवाब दे देगा कि खुशी गुम होती तो हमें क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में। आगे आगे आते चाहिए ताकि टाइम अपना कम है ना, जिसको भी बोलना है वो आगे आ जाओ। सब अनुभवी बैठे हैं ना, खुशी कब गुम होती है?
ओम शांति। मेरे अनुभव से ये है कि जब हम स्वयं को और बाबा को भूलते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। आपको एक्सेप्टेड है, स्वयं को भूल जाते हैं और तो बाबा को, स्वयं को भूले माना बाबा को भी भूले, तो खुशी गायब हो जाती है। ओम शांति।
इधर से कोई जवाब देवे इसका?
बाबा को याद करेंगे तो खुशी आ जाएगी।
बाबा को फिर से याद करेंगे तो खुशी वापस आ जाएगी।
एक अच्छा सा गीत अगर सुन लो तो उससे भी खुशी आ जाती है।
जी जी, हाँ। बाबा ने कहा ना अच्छे अच्छे गीत अपने पास रखो।
कोई हमें कुछ बोल देता है या हमारा अपमान कर देता है तो हमारी खुशी गुम हो जाती।
हाँ, तो इसका उत्तर दे दो। अगर किसी ने अपमान कर दिया है तो खुशी गुम हो जाती है, उसका उत्तर दे दीजिए।
अगर हमारा किसी ने अपमान कर दिया तो हमारी खुशी गायब हो जाती, तो उसका सारा जो श्रेय जाता है। अगर हम अपनी सोच को बदल दे तो हम उस खुशी को, दुख भरी बात को खुशी में बदल सकते हैं।
अगर हम ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं, जो बाबा कहते हैं ना, सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, ज्ञान स्वरूप बनो। जो हमारा कोई अपमान करता है तो बाबा ने कहा है ज्ञान के पॉइंट्स यूज करो, ज्ञान स्वरूप बनो। निंदा स्तुति मान अपमान में हमारी स्थिरता, क्योंकि बाबा ने कहा तुम युधिष्ठिर हो, पांडव हो, तो ये ज्ञान के पॉइंट्स हमारे अंदर आ जाए, याद करे तो अपमान भी सहन कर सकते हैं। और उनके साथ मेरा कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा, ये भी पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है। ओम शांति।
ओम शांति। अगर कोई हमारा अपमान करता है तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो एक ड्रामा का भी पार्ट है, उसके कर्मों के अनुसार है। हम उसके लिए शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रख सकते हैं, ठीक है, तो उससे हमें बुरा नहीं मानना है। इस तरह से भी कर सकते हैं, हम अपनी खुशी को रिटर्न ला सकते हैं।
ओम शांति।
अभी दूसरा कोई कारण बताइए खुशी गुम होने का।
ओम शांति। सबसे पहले तो यही है कि हमें एक जो प्रारंभिक गुण है हमारा, जो दैवी गुण सहनशीलता और धीरज, उसको इमीडिएट रिएक्ट ना करें, कुछ समय ले लें, अपने आप समझ आ जाएगी। और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर वो भी धीरज भी नहीं आ रहा तो उसको इमीडिएट जो कहा है उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद उसके वो आ जाएगा, एक्सेप्ट धीरज भी आ जाएगा।
ओम शांति। कारण बता रहा हूँ मैं, अगर मैं युगल का कहना नहीं मानता हूँ तो मेरी खुशी गायब हो जाती है।
दो चीजें है, युगल का कहना नहीं मानता तो मेरी खुशी गायब होती
है, बाबा ही होंगे ना,
और युगल की भी खुशी गायब होती है। लेकिन उस समय ये ध्यान रखना है कि जो मेरी युगल है, लौकिक नहीं अलौकिक, वो कभी ना खुश नहीं होती। 80 साल हो गए फिर भी बाबा मीठे बच्चे बोलते रहता है, कितना पेशेंस है। अगर वो पेशेंस मैं धारण करूं तो फिर मेरी खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल, अभी तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप, अभी तो मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद हर एक का रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बाद आप ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन एसी 3 टायर एसी है, 2nd AC है, आपका बर्थ है, और वहां कोई आके बैठ गया, अभी वो बोल रहा है कि मेरा रिजर्वेशन है। उस समय आपकी स्थिति क्या होगी? आप खुशी में रहेंगे या सब कुछ भूल जाएंगे और बाद में उससे झगड़ा होगा और फिर उसको टोली वाली खिलाएंगे, ये करेंगे? अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो और उसका रीजन बताओ और उसका सॉल्यूशन भी बताइए।
बीमारी में भी खुशी गुम हो जाती है।
ओम शांति। जब हम किसी भी आत्मा से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा रखते हैं तो भी हमें निराशा होती है और हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो अब हम तब हम भूल जाते हैं कि अगर उस आत्मा की कैपेसिटी 60% है और हम 100% उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 100% नहीं कर पाएगा, वो 60 ही करेगा क्योंकि उसका पार्ट ही इतना है। तो हमें निराशा होती है तो हमारी खुशी गायब होती है।
ओम शांति। हमारा अटैचमेंट हर चीज में इतना ज्यादा है, अगर वो चली जाती है तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। जैसे वैभव वस्तुओं या
कोई चीज चली जाती है, कोई वस्तु में, कोई व्यक्ति में,
वस्तु में, वैभव में, अगर वो चली जाती है, उससे अटैचमेंट इतना ज्यादा है, वो जरा सी भी चली गई तो वो खुशी गायब हो जाती है हमारी।
उनको दो विलास विकास पे।
ओम शांति। मैंने स्वयं आत्मा को अच्छी रीते नहीं पहचाना होगा, तिमी परमात्मा को भी अच्छी रीते नहीं पहचान सकता, इसलिए खुशी भी गायब रहती। यानी अच्छी रीति जो आत्मा को पहचान लिया थी, परमात्मा को भी अच्छी रीति पहचानेगा, इसमें बहुत गुई है। वो गुई है जितना जानेगा उतना वो बाबा की खुशी बढ़ती जाएगी।
ओम शांति। हमारा ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब हम कोई भी बात आती है जो हमको नाखुश करती है तो हमारा एक वर्ड बहुत फेमस है, उसको ड्रामा कहने का और आगे बढ़ने का। तो ड्रामा का पार्ट पक्का रहे तो खुशी रहेगी।
खुशी बरकरार रहने के लिए मेरे ख्याल से एक ही सॉल्यूशन है, कारण बहुत हो गए। एक ही सॉल्यूशन है कि हर कोई खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश करे, चेहरा हमारा बड़ा सुंदर हो। और सुंदर इसलिए है, मैं बताता हूं आपको, पूरी बात सुनिए। सुंदर इसलिए है कि आप हमेशा कभी स्टूडियो में गए होंगे, गए ना, बहने गई, भाई भी गए हैं। स्टूडियो में जाने के बाद वो कैमरामैन आपको क्या बोलता है? स्माइल प्लीज। क्यों बोलता है? क्योंकि आप स्माइल नहीं करते, आप स्माइल नहीं करते, सिर्फ कैमरा के सामने आते हो और फिर स्माइल करते हो और स्माइल करने की कोशिश करते हो, फिर कैमरामैन बोलता है इतना नहीं हंसना है, थोड़ा कम। फिर हम थोड़ा कम करते हैं तो बोलता है बहुत कम हो गया, बहुत सीरियस हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हंसो। और करते करते हमारी हालत ऐसी होती है कि आधार कार्ड का फोटो आता है ना अपना, वो फोटो हो जाता है। तो हमें ना कैसा है? और अगर हम ये कहे कि अब बाबा हमारा कैमरामैन है और वो हमेशा बोलता है मुस्कुराओ मुस्कुराओ, और हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो खुशी परमानेंट गारंटेड रहेगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कैमरामैन हमें स्माइल प्लीज बोलता है। थैंक यू।
ओम शांति। हम उम्मीदें सिर्फ बाबा के अलावा किसी से ना रखें, हमारी उम्मीदें एक्सपेक्टेशन किसी और से ना हो, सिर्फ बाबा के अलावा, तो हमें खुशी जो है वो मिलती, खुशी हमारी गायब नहीं होगी।
तो इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा कि हम बाबा से ही ले रहे हैं, हम बाबा से ले नहीं पाते तो व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं।
ओम शांति। जैसे अभी सभी ने बताया कि अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमारी खुशी चली जाती है, और जैसे आज बाबा ने मुरली में हमें बताया सब इसको ड्रामा समझना है और साक्षी होकर अगर देखेंगे तो हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती। तो सामने वाला अगर अपना अपमान करता है तो हम ऐसा समझ, हमें ध्यान में उसी वक्त आनी चाहिए कि उसका स्वभाव संस्कार है, इसके लिए वो ऐसी बात कर रहा है। लेकिन हमें तो अब्बाबा का ज्ञान मिला है, हमें ही समझ से उसके ऊपर कोई हमारी खुशी नहीं गायब होनी चाहिए और साक्षी होकर देखना चाहिए। ओम शांति।
समझो लौकिक में एक आधा फार्मर है, उसकी बहुत बड़ी फसल हरी भरी हो गई है, अचानक नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से उसकी पूरी फसल हाथ से चली जाए या वो घर से बेघर हो जाए, ऐसी स्थिति में भी उसकी खुशी गायब हो सकती है।
तो बाबा ने ऐसी परिस्थिति के लिए कहा है ना कि नुकसान किसका हो रहा है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, है ना, तो नुकसान भी बाबा का और फायदा भी होगा तो बाबा का, तो फिर खुशी गायब नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। दो सवाल जो यहाँ आए, एक ही, हमारा अपमान होता है तो खुशी गायब होती है, सिर्फ खुशी नहीं गायब होती है लेकिन हम उसके बारे में गलत सोचते हैं, वो हमारे बारे में गलत, माना संबंध भी खराब होते हैं, तो इसका ऊपर ऊपर इलाज करने के बजाय हम सब योगी आत्माएं हैं, अगर योग का प्रयोग करेंगे अमृत वेला उस आत्मा से अगर हम माफी मांगेंगे कि भले किसी जन्म में है तो इस तरह का दुख आप हमें दे रहे हो, आप हमें क्षमा करो, हम भी आपको क्षमा कर देते हैं, हम दोनों भगवान के बच्चे हैं, देखो भगवान हमारा साथी है, और ये प्रयोग हमने किया हुआ है। दूसरा, अभी अभी हमारे किसान भाई खड़े हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, और इन खेती में अगर हम योग का प्रयोग करें, एक एक अगर आपको प्रयोग सुनाए तो आप सुनते ही जाएंगे, सबकी खेती डूबेगी लेकिन आपकी खेती नहीं डूबेगी, सबके खेती को रोग बीमारी लगेगी लेकिन आपके खेती को रोग बीमारी नहीं लगेगी, सबके खेती में जितना उपज कम होगा आपके खेती में ज्यादा होगा, उसका न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ेगा। अगर हम यौगिक खेती माना बाबा के याद से रोज उस खेती को सकाश दे, समय कम है वरना मैं एक अनुभव जरूर आपको सुना देती कैसे ये पेड़ पौधे भी हमारे सुनते हैं, ना हमारी खेती डूबती है ना हमारी खेती को कुछ होता है। आप ये योगिक खेती की थोड़ी सी अगर ट्रेनिंग लेंगे आपको बहुत 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 फायदा होगा क्योंकि आप किसान हैं। ओम शांति। ओम शांति। उन्होंने तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि खेती के ऊपर योग का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, एक प्रैक्टिकल का अनुभव है, मसाला आदि बनाने की फैक्ट्री है और अचानक उनकी फैक्ट्री को आग लग गई और आग लगने के कारण करोड़ों का उनका नुकसान हुआ, और जब हम उनको मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा, दीदी मेरा था ही क्या जो चला गया, जो भगवान ने दिया था और उसका ही गया, मेरा कुछ भी नहीं गया, आज भी मैं रोजी रोटी खा रहा हूँ आप सबकी दुआओं से। मैंने एक नॉन बीके भी अनुभव कर सकता है, तो बाबा ने भी हमें कहा है किसका, तो उस अनुसार वो परिस्थिति, क्योंकि ऐसी भी परिस्थिति आती ही है, ऐसा नहीं होता कि कभी ऐसी परिस्थिति ना आए, तो ये अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने उसका दिया हुआ है, उसका गया, हमारा क्या गया, ये अभ्यास बहुत काम में आएगा। ओम शांति।
ओम शांति। बीमारी के बारे में जो आप बहन जी ने प्रश्न किया था, तो मैं एक अनुभव अपना सुनाता हूँ स्वयं का। आज से 1.5 साल पहले मैं बहुत बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था कि अपने शहर के डॉक्टरों ने ना ही कर दिया था कि बोलिए इनको बाहर ले जाइए कहीं, बहुत ज्यादा, मतलब लास्ट स्टेज मेरी 90% में पहुंच गया था। मैं जब नागपुर पहुंचा तो डॉक्टर ने दवाई किया, 3 दिन दवाई किया मेरी, और तबीयत बिगड़ती चली गई। 3 दिन बाद मुझे, तब तक मुझे बाबा याद नहीं आया, तीन दिन बाद जब ये हुआ कि मुझे भी सुनाई देता था डॉक्टर से जब बात करते थे, तो मुझे लगा, तो मैंने कहा बाबा मुझे अभी बहुत सेवा करनी है और ये अभी बहुत समय पड़ा है संगम युग का, बहुत सेवा करनी है और क्या मुझे आज ही ले जाएंगे। इतने में डॉक्टर आते हैं और उस दिन वो जो भी दवाई थी पूरी दवाई जो है चेंज कर देते हैं। पूरी दवाई चेंज करने के बाद तीन दिन में मैं, जिसको डॉक्टर बोल रहे थे इनका आखिरी समय है, तीन दिन बाद फिर मेरी पूरी चेकअप हुई, कहीं भी कोई भी बीमारी मेरे अंदर नहीं बची। तो एक उदाहरण तो यह है कि अगर बाबा याद रहे तो कोई भी बीमारी आपको किसी भी समय होगी वो ठीक हो जाएगी। और दूसरा एक पहला प्रश्न था कि कोई किसी का अपमान कर दे, अगर कोई मेरा अपमान करता है तो सबसे पहले मुझे ये सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से मेरी कमी है, तब तो है। बाबा हमेशा कहते हैं कि निंदा करने वाले को मित्र समझो, तो मुझे उस अपमान करने वाले को मित्र समझना चाहिए और अपने अंदर झांकना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण इन्होंने मेरा अपमान किया। तो मुझे अपने आप को उसको धन्यवाद भी देना चाहिए कि मेरी कमी बता के मुझे सुधरने का मौका मिले। ओम शांति।
ओम शांति। हमने एक बार 100 कारण लिखे थे खुशी गुम होने के, और जीवन में भी कई ऐसी बातें आई जिसमें खुशी बिल्कुल लोअर लेवल पर आ गई। फिर हमने चिंतन करते करते अपने आप को फिर से सेट किया, उसमें कुछ बातें स्पष्ट हुई, जैसे कि बाबा ने हमें इस पूरे कल्प में जो पाठ दिया हुआ है वो बहुत सुंदर पाठ है, और उसकी अगर हमें बहुत गहराई से महसूसता आ जाती है कि मेरा इस कल्प में पूरा ड्रामा में कल्प कल्प के लिए कितना श्रेष्ठ पाठ है, उस स्मृति से हम अपनी खुशी को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, अभाव के प्रभाव के कारण भी कई बार हमें खुशी गुम होती है, तो उसमें हमने ये महसूस किया कि मैं जब देखता हूँ जितने समय भी मिला है इस ज्ञान में तो पूरा सफल हुआ है वो समय, और उसके कारण मेरा सब कुछ जमा हो गया है बाबा के पास, और इतना है कि अगर इसी सेकंड भी आगे बंद हो जाए कुछ सफल होना तो भी मैं संतुष्ट रह सकता हूँ, इतना सफल किया हुआ है, इसलिए भी संतुष्टता व खुशी बनी रह सकती है, क्योंकि संतुष्टता के पेड़ को ही खुशी का फल लगता है। दूसरा, कोई अपमानित करता है अधिकतर, उसके कारण हमारी खुशी गुम होती है। उसमें मैंने देखा कि यदि मैं अपनी वैल्यूएशन को खुद सेट कर लूं कि मैं क्या हूं, तो मुझे दूसरे के जो मैं नहीं हूं उसकी तारीफ भी कुछ कर सकते हैं, तो उसमें मैं उस खुशी को स्वीकार नहीं करूंगा, और जो मेरी लेवल है उससे नीचे भी मुझे दिखा सकते हैं तो उसको भी यदि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पहले तो जब कोई ज्यादा महिमा करे तब मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो फिर वो उसके वन के ऊपर एक के ऊपर एक फ्री ऐसी बात है। अगर मैं फुल जाता हूं तो फिर जब कोई अपमान करेगा, मतलब मेरी जो लेवल है उससे नीचे मुझे कोई दिखाने की कोशिश करेगा, तो निश्चित तौर पर मुझे वो दुख गम लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी है। और उससे भी और एक बात चिंतन में आई थी कि जो भी बाबा के सेंटर से या अपना सेंटर है उसमें जो भी सेवादारी है, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, सब मेरे बाबा की सेवा कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा महसूस करता हूँ तो मेरी अपेक्षाएं उनसे बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर, क्योंकि वो मेरी सेवा कर रहे, मेरे घर का काम वो सब कर रहे, तो मुझे उनसे अपेक्षाएं नहीं रहेंगी और मुझसे उनको सबको खुशी या स्नेह और दुआएं जाती रहेंगी, सहयोग दिया जाएगा, लेकिन मुझे जो लेना है वो एक से लेना है और देना सबको है, इस भावना से भी खुशी को मेंटेन किया जा सकता है। ओम शांति।
ओम शांति। बाल्यकाल से आज तक जो है स्नेह संपर्क में या तो रिलेशनशिप में जितने भी आत्माएं हमारे अंग संग रही है उनमें से मैं अपने को ज्यादा खुशनसीब समझता हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में कुछ लौकिक भौतिक साधन सुविधा बहुत सारी है, मेरे से जास्ती है, फिर भी मैं अपने को खुशी बहुत खुश समझता हूं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे मेरी योग्यता से भी बहुत गुना ज्यादा कुछ दिया है। उनके पास लौकिक भौतिक चीजें बहुत है, होगी किसके पास में, लेकिन उनके पास तन का सुख, मन का सुख, समय का सुख और जन का सुख है क्या? तो मेरे पास यह सभी चीज है और एक सिक्योर लाइफ है, अभी भी है और इसके बाद लिए भी है। उनके पास में चिंताएं है, क्या होगा कल, मेरे पास में उस सब चीज का जवाब है, इसीलिए खुशी है। मेरे पास जो कुछ कल होगा वो आज से बहुत बेहतर होगा, इसके लिए मेरी खुशी है, न कभी कम होती है न कभी कम होगी। ओम शांति।
अभी लास्ट दो को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे।
ओम
आपके पीछे और एक है।
ओम शांति। हमें हम क्या करते हैं, खुशी खुद के लिए ढूंढते हैं, सेफ्टी खुद के लिए ढूंढते हैं, पर हमें पहले ये विचार करना चाहिए कि सामने वाले को खुश हम रखेंगे तो दुगना खुशी जरूर मिलेगी। और जो भी हमारे साथ रहते हैं ड्रामानुसार घर में बाहर ऑफिस में, तो उन लोगों के साथ जो हमारी हिसाब किताब है उसके कारण वो तो परवश है, पर हमें तो ज्ञान है ना, तो हम सामने वाले की खुशी ढूंढेंगे, उनको खुश रखेंगे तो खुद की खुशी ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। एक बात तो एक मैं दो बातें बताना चाहूंगी। एक तो अभी अभी हमने कल ही सूरज भाई से सुना कि जितने भी लोग हमारी खुशी गायब करने के निमित्त हैं वो सब हमारी लाइफ के विलन्स हैं और हमें क्या बना रहे हैं,
हीरो
बना रहे हैं। तो सबसे पहले यही सोचना है, विलेन नहीं होते तो हम हीरो कैसे होते। तो इसलिए सारे विलेन है और हम हीरो पार्टधारी हैं। दूसरी बात, एक छोटा सा अनुभव है, अभी 4 महीने पहले की बात है कि हमारे बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी हैं उनको थोड़ा सा हमारा जो गार्डन है उसके प्रति कुछ भावना होगी, तो मेरी एब्सेंस में उन्होंने मेरा बहुत पुराना कड़ी पत्ते का पेड़ जो थोड़ा डंडी डंडी हो गया था काट के फेंक दिया। जब मैं वापस आई बाहर से और मैंने देखा तो एक सेकंड के लिए तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अंदर अंदर एकदम फीलिंग आ गई। तुरंत चेयरमैन के पास गई, उनको कंप्लेंट दिया वगैरह, लेकिन सेक्रेटरी से कुछ नहीं बोला। लेकिन मैंने उस पेड़ को बाद में घर में आके मैंने सोचा मैंने क्यों किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद मेरे को बहुत अटैचमेंट था और बाबा कहता आपको नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मैंने उस पेड़ को पानी देना नहीं छोड़ा, मैं फिर भी उसको पानी देती रही, डंडी बची थी बस इतनी सी, लेकिन मैं पानी देती रही। 1 महीने के अंदर उसके अंदर 5-6 बड़े बड़े पौधे आ गए और वो उग गया। मतलब बाबा आपकी कमाल है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी खुशी गायब कोई नहीं कर सकता, खुशी देने वाला हमको तो ऊपर बैठा है। ओम शांति।
ओम शांति। एक भाई तीसरी मंजिल की छत पे टहल रहा था, नीचे से आवाज लगाई, करतार सिंह तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वो भाई घबराता हुआ दौड़ा सीढ़ियों पे, जैसे उतरने लगा तो लुढ़कता हुआ जब पहली मंजिल दूसरी मंजिल पे पहुंचा तो उसे याद आया तेरी तो लड़की है ही नहीं। फिर भागा उठ करके, फिर ऐसे ही भागा, परेशान था, लुढ़कता लुढ़कता फिर पहली मंजिल पे पहुंचा, फिर उसको याद आया तेरी तो शादी नहीं हुई। फिर भागा वो, जब नीचे आया तो एक बहन आई, फरिश्ता आया एक, उसने कहा अरे भाई तेरा नाम तो करतार सिंह भी नहीं है, तेरा तो नाम सत्यवीर है। तो जब ऐसी हालत होती है सब कुछ भूल जाता है तब कौन फरिश्ता आता है ये बताने कि तेरा नाम सत्यवीर है। तो वहां बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी दीदियां आती हैं, तो वो हमें आकर के याद दिलाती हैं। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो हमें अपनी पहचान, परमात्मा की पहचान ये देती हैं ब्रह्मा कुमारी दीदियां। ओम शांति।
बस अभी भाई का लास्ट लेते हैं,
क्योंकि अपने को
प्रोजेक्ट में क्या करना है वो सुनना है, बाकी तो सबके पास बहुत ज्ञान भी है, समझ भी है और उदाहरण तो बहुत सारे मिलेंगे।
ओम शांति। बराबर, समय पे तो याद नहीं आता, हर एक का पार्ट अलग अलग है, पर हमने देखा हुआ है कि हम जब ड्रामा का पार्ट देखते हैं, हम ड्रामा कहते हैं, तो ड्रामा का भी थोड़ा सा विचार सागर मंथन चलता है। तो ड्रामा का राज ऐसे होता है कि डी फॉर डिटैचमेंट, जो भी सिचुएशन आती है तो डी फॉर डिटैचमेंट रहता है। आर फॉर रिमेम्बरस, मतलब हमको किसकी याद होनी चाहिए, तो बाबा की याद होनी चाहिए। फिर ए फॉर आत्मा, तो हम आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं। और फिर एम फॉर मर्सीफुल, मना हम जिसके जिसका किसी से भी या जिस परिस्थिति से हमको अगर नाखुश होते हैं तो हमको दयावान बनना होता है। और ए फॉर अटेंशन, कि हम आगे के लिए ऐसा गलती या हमसे कोई विघ्न उत्पन्न न हो जिसके कारण कोई खुशी गुम हो जाए। ओम शांति।
सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ने बहुत दिल खोल के पार्टिसिपेट किया और ऐसे लग रहा है सब बहुत फुल हैं ज्ञान में, अनुभव में। हमारे पास समय के अभाव के कारण सबको नहीं सुन पा रहे, लेकिन ऐसे होगा कि शायद इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं बड़े रहेंगे तो और भी सबको सुनते रहेंगे। तो इस खुशी ये विषय जितना गहरा और गंभीर है, तो गंभीरता की सूर्य समान रोशनी हमारे आदरणीय दीदी जी ने डाली और फिर एक गेम भी करा लिया बहुत प्यारा सा, और उतना ही जितना ये गंभीर है उतना ही उस विषय को रमणीक बनाने के लिए हमारे तनुजा दीदी हमेशा बहुत प्रयास करते हैं। तो अलका दीदी और तनुजा दीदी का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो जितना गहराई में ले जाते हैं तनुजा दीदी उतना ही उसमें वो रमणीकता से और चार चांद लगाते हैं। तो अब हम सभी के बीच में तनुजा दीदी हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और ब्रीफ करेंगे।
ओम शांति। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लिखत वाला नहीं है, प्रैक्टिकल वाला है, राइटिंग वाला नहीं है, और थ्योरिकल बहुत कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो हम सभी यहाँ से ही ऐसे संकल्प हॉल से अभी से ही करें, और हॉल से उठने के बाद बाहर सबको पता चले कि आप कौन से प्रोजेक्ट के मेंबर है या कौन सा प्रोजेक्ट आपने लिया है। और ये अगले साल जब आप यहाँ आएंगे रिपोर्ट लेके, तो हमारा रिपोर्ट कोई वो भी लिखत में नहीं होगा, वो कैसे होगा, चेहरे से होगा। हाँ, तो हमारे भाई है साउंड वाले भाई, उनके पास एक बहुत अच्छा स्लोगन है, वो बताएंगे कि इन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है और कई सालों से कर रहे हैं। तो आप उनका चेहरा देख लीजिए, सदा ही ऐसा रहता है। हाँ, बहुत कम वो चेहरा उतरा हुआ चेहरा और चौड़ा और लंबा, हाँ दो चेहरा होता है ना। तो हमारा चेहरा आज से पूरा स्माइली, ऑलवेज स्माइली। कौन कौन करेंगे? वाओ, करना ही है, यही प्रोजेक्ट है हमारा।
ओम शांति। 2014 5 अप्रैल 2014 बाबा सभी से प्रॉमिस कराया है, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, हम सब प्रॉमिस किए थे लास्ट ग्रुप में। फिर होने के बाद मैं गांव गया था, लास्ट मिलन था, फिर हर जगह यही क्लास करते थे। मुरली बढ़ के बाबा ने जो प्रॉमिस कराया है उधर भी सबसे कराए थे। उसके बाद फिर मधुबन रिटर्न आ रहा था, आंध्रा से आने में 1.5 दिन 2 दिन लगेगा, तब मुझे संकल्प आया, सभी से तो प्रॉमिस तो कराया लेकिन मेरे में कितना तक खुशी है, मैं कहाँ तक हूँ, उस पर संकल्प चल रहा था। इसके लिए मुझे अटेंशन होने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए करके मैं एक छोटा स्लिप में लिख जाऊ, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, ऐसा बैज में रख के चलना शुरू किया, ऐसा करेंगे करके। फिर मधुबन आ गया, आने के बाद वो लगाने के लिए हिम्मत आया नहीं, रखेंगे सब पूछेंगे, प्रैक्टिकल इश्यूज आएगा कैसा, 3-4 दिन। फिर 5वां दिन हमारे फ्रेंड्स तो होते ही हैं, उनसे कंप्यूटर में बनवाया, बाप दादा सकाश देते जैसा, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, पहला लिखा था। फिर उनको बोला भाई सदा निकाल दो, सदा तो हम रहते नहीं है, सदा कैसा, खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, ठीक है, ऐसा बना के दिया। फिर मैं हिम्मत से लगा के चलना शुरू किया, सब लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, अच्छा बड़ा पुरुषार्थ आ गया करके। मैं सोचा मुझे क्या मतलब है, मैं लक्ष्य लिया बोला। एक बार मैं भोजन कर रहा था, हमारे पास में और भाई साहब बैठे थे। सामने वाला बोला, क्या भाई साहब, क्या आप भाई कुछ लगा के घूम रहे, क्या था पूछे उसने। हाँ, खुश रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। वो आपको बता रहा है, आपको बनने के लिए आपको दिख रहा है ना। बोला, पांच छह दिन लगाया था, उसके बाद मुझे आया संकल्प में, अरे हम सदा लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं तो पहुंचने का सवाल तो है ही नहीं। कह के सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, कह के लिख के ऐसा पान के डेली जा रहा था। हाल में क्लास में स्टेज पर भी जाते हैं माइक देने के लिए, सब लोग देखते हैं, देखे खुश हो जाते हैं, सभी का रेस्पॉन्स है। लेकिन वास्तव में एक बार टेलीफोन स्टेज में गया, तभी से मोबाइल तो है नहीं मेरे पास, फोन में बात कर रहा था। बाजू में एक नया भाई बोला, बात करे बाहर नहीं बस, अरे भाई अब क्या ऐसा बात कर रहे हो, वो मुझे पता नहीं कौन है। मैं बोला, क्या बात किया भाई, मैं क्या बात करने का ढंग ऐसा होता है क्या, पूछा वो, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बात किया। फिर वो बोला, अब क्या बैजी पहना, क्या कैसा बात कर रहे हो, बाहर का अनजान व्यक्ति था वो। बोला, ऐसा हमको कौन बोल सकता है, बैजी पाना है तो प्रॉमिस किया तो उसको बेकार चलना ही है। तब मुझे अटेंशन आया, अरे भाई हमारा स्थिति हम फिर सब हम ढंग से होना चाहिए, लक्ष्य तो वही है ना। ऐसा 2014 5 अप्रैल शायद 15 अप्रैल से पाना होगा, अभी तक 10 साल से पान के डेली क्लास में और कहाँ भी हो पान के जाते हैं। इससे बहुत फायदा हुआ है, एक मिनट, इससे बहुत फायदा यह हुआ है, सभी से बातें तो आता है, समटाइम ये देख के मैं चुप जाता हूँ, समटाइम्स सामने वाला आता है कुछ बात लेके, वो ये देख के अरे छोड़ो चला जाता है।
फायदा भी बहुत है।
लेकिन अटेंशन तो जन्म सभी का अटेंशन हमारे ऊपर होता है, लेकिन हमारा लक्ष्य वही है ना, हम जीवन समर्पण किया है किस लिए, खुश रहने के लिए, सभी को खुशी देने के लिए। ऐसा तो अरे जब ये टॉपिक चल रहा था तब मुझे याद आया था, अरे भाई हम वही तो पान रहे हैं। कहके बहन जी को लिखा था।
अच्छा, हमको बहुत खुशी है कि अपने प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल करने वाले मधुबन निवासी भी शामिल हो गए हैं, और वो दिन प्रतिदिन गाइड भी करते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करते समय जो डिफिकल्टी आती है वो सभी को आएगी, अगर उसका गाइडेंस मिलेगा तो करना आसान हो जाएगा। थैंक यू भाई।
तरह कुछ लोग पक्का प्रॉमिस लिखा है उसमें, इसलिए कुछ लोग डरते थे पढ़ने के लिए। अभी ये सीजन में आपको पता है बाबा दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, खास इसी के ऊपर 2-3 मोलिया चला है, तो मैं लक्ष्य रखा है अभी तो इसके हिसाब से करके दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, इसके ऊपर दिव्य वरदान लिखा था। ये तो हर एक वैसे पक्का प्रॉमिस कर तो उसके हिसाब से रहना ही पड़ेगा, तो दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, इवन सब कुछ चाहिए तो अच्छा है, हम रख सकते हैं। ओके, अच्छा, ओम शांति, थैंक्स ऑल।
अभी ये जो प्रोजेक्ट हम सभी को प्रैक्टिकल में करना है, तो जैसे नए नए ज्ञान में आए, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे और वो सब बातें करने में थोड़ा सा पहले जैसे लगता था ना, वैसे ही इसमें भी होगा, लेकिन सभी ने हिम्मत किया और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमको बोलने की जरूरत नहीं, लोग बोलते कि ये लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, ये बाहर का नहीं खाते, इनको अलग से रखो, हाँ माना वो लोग हमारे बारे में बोलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा हमको हिम्मत रखना पड़ता है। ऐसे ही इस प्रोजेक्ट के लिए भी जैसे भाई जी का अनुभव है, ऐसे हम सभी को हिम्मत करके करना पड़ेगा, हाँ? फिर वो खुद ही बोलेंगे ये तो खुशी लोग है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे आप सबको उस दिन बताया था कि हमने 5 टॉपिक लिया है, लेकिन अभी कल और एक ऐड हुआ है, तो 6 टॉपिक्स है। लास्ट का टॉपिक रहेगा खुशियों का सागर, खुशियों के सागर में डुबकी कैसे लगाएंगे, तो वो गामदेवी सेंटर ने लिया है, गामदेवी जोन ने, क्योंकि उनके सामने सेंटर के सामने सागर है, समंदर है, और वो समंदर में जब बाबा घूमने जाते थे तो बाबा को साक्षात्कार हुए,
गुलजार दादी का भी अंतिम वहां पे ही रहते थे, दादी को वहां घुमाने ले जाते थे समंदर के वहां, तो उनको बहुत खुशी थी कि मैं ये टॉपिक में कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो अपने नेहा बहन जी है गामदेवी के, उन्होंने उनके बहनों को बोला कि हम भी एक टॉपिक लेंगे और उसके ऊपर सबको स्टडी कराएंगे भी करेंगे भी। तो लास्ट का छठवां टॉपिक है खुशियों का सागर, खुशियों का समंदर। हाँ, वो एक महीना चलेगा, लास्ट मार्च महीना, 1 मार्च से 31 मार्च। हाँ, सभी को ईयर एंडिंग में क्या करना है, फिर खुशी का चार्ट देना है। हाँ, खुशी का पासबुक भरना है। हाँ, अच्छा, अभी ये जो प्रोजेक्ट है सभी को जो बांटा हुआ है, हाँ, दो दो महीने का काम दिया हुआ है, तो उनको थोड़ा ट्रैक भी हम देंगे, क्योंकि उसी ट्रैक से चलेंगे तो हम एक लक्ष्य में पहुंचेंगे। तो ट्रैक दिया हुआ है, जितना हो सकता हमारे ब्राह्मण जीवन के लाइफ में जो जो बातें आती है उसको हमें खुशी से सब कुछ करना और करवाना है। ये पूरे साल भर का हमारा लक्ष्य रहेगा। तो हर मास के लास्ट सप्ताह में, हर महीने के लास्ट सप्ताह में हम लोग सभी जूम पर मिलेंगे। मिलेंगे सभी, जितनी संख्या यहाँ पे दिख रहे उतनी जूम पे दिखनी चाहिए। हाँ, आपको कोई आने जाने का खर्चा नहीं है। हाँ, आप ट्रेन में है, गार्डन में है, वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी खाना बना रहे, उसके लिए कोई भी चीज का कारण नहीं हो सकता है। तो सभी को जूम पर कंपलसरी जुड़ना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के जिम्मेवार हम सभी है। ऐसे नहीं स्टेज पे बैठे लेकिन थोड़ा गाइड करने के लिए किसी का नाम आता है, लेकिन हर एक को ये समझना है कि मैं खुश तो दुनिया खुश, मेरी जिम्मेवारी है खुश रहना और सबको खुश करना। तो खुशी के प्रोजेक्ट में हम सभी को कंट्रीब्यूट भी करना है, सबको जिम्मेवार समझना है। तो जिम्मेवार व्यक्ति कभी एब्सेंट नहीं हो सकता है, चाहे बीमार है। आप लेटे लेटे भी तो सुन सकते हैं ना, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, चाहे कभी वीडियो बंद किया तो भी हर्जा नहीं, लेकिन सुन तो सकते हैं, जुड़ तो सकते हैं। मई मास से, एक मास, एक मई से चालू करेंगे और हमारा 31 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। माना ये तो सदा के लिए, अभी हमको 5000 साल करना है कि नहीं? 5000 साल के लिए। हाँ जी, जूम। हाँ, वो बताएंगे। आप सभी को अभी जो एक फॉर्म दिया है उस फॉर्म में आप सब फिलअप करेंगे, आपका नंबर, नाम, ये वो सब, उसका एक ग्रुप बनाएंगे हम और उस ग्रुप में डालते जाएंगे कब मीटिंग है, और हर रोज का और हर सप्ताह का होमवर्क सभी को मिलेगा और वो सभी को करना है। और हम इसका प्रूफ भी चाहते हैं, और प्रूफ से क्या होता है, एक दूसरे को खुशी होती है कि यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहां पे वो कर रहे हैं। तो जो जो आपको होमवर्क मिलेगा उस दिन शाम को 8 से 9 या 8 से 10 वो ग्रुप को खुला किया जाएगा, ओपन रखेंगे, जिसमें आप सभी को फोटो या लिखत या जो भी है वो उसमें डालना है, ताकि सभी एक दूसरे को देख सकेंगे कि कौन क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, ये प्रूफ होने से एक कंपटीशन भी होता है, एंजॉयमेंट भी होता है, और हमको लगता है कि हमारा भी जाना चाहिए, इस निमित्त पुरुषार्थ भी होता है। तो जैसे मैंने कल भी बताया कि हमने 21 दिन का अमृत वेला भोग कर रखा था, तो 21 दिन पहले पहले तो सबको थोड़ा कठिन लगा, लेकिन सुबह अमृत वेले भोग बना के, नहा धो के भोग बना के 4 बजे लगाना, हाँ, ये तो पहले एकदम कठिन लगता था, लेकिन बाद में इतना सभी को उसमें मजा आया, क्योंकि भोग लगने के बाद योग हो जाता था, 5 बजे सब व्हाट्सएप में फोटो डालते थे, हाँ, क्या बनाया और क्या कैसे भोग को सजाया और बाबा के सामने रखा और उनका नाम, नई नई चीजें बनाते थे। और लास्ट दिन जब 21वां दिन आया, कईयों ने 21 प्रकार, 56 प्रकार, 108 प्रकार भी बनाए सुबह 4 बजे। तो ये डालने से भी एक दूसरे को बहुत उमंग आता है, ये मैं इसके लिए उदाहरण दे रही हूँ। तो इसलिए जैसे पहला ही दिन जो बताया है पहला टॉपिक है मनोरंजनमय ब्राह्मण जीवन। पहला सब टॉपिक क्या है? मनोरंजनमय ब्राह्मण जीवन। तो पहले दिन सभी को क्या करना है वो अभी बता देते हैं, व्हाट्सएप में भी डालेंगे। तो पहले दिन हरेक को अपना घर, अपना रूम, अपना सेंटर या बाबा का कमरा जो भी है वो खुशियों से कैसे सजाना है उसका आपको गाइडलाइन मिलेगा, उसके फोटोज भेजेंगे। हाँ, कोई ना कोई जैसे स्लोगन है उसके साथ बाबा के हंसता हुआ चेहरा, दादियों के हंसते हुए चेहरे या कोई स्माइली के ऊपर हमने एक थीम के साथ एक प्रोग्राम किया था स्माइली थीम के साथ, तो उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे चित्र है, वो आपको हम भेजेंगे व्हाट्सएप पे। आप उसका प्रिंट लेके आपका घर बहुत सुंदर सजा सकते हैं। और जो भी आएगा आपके घर में 2 महीना या साल भर वो खुश होके जाएगा, वो पढ़ने से वो खुश हो जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे सुंदर स्लोगन टोटके और क्वेश्चन ऐसे है कि वो पढ़ते ही अपने को खुशी आ जाती है और गम भूल जाता है। तो ऐसे हम आपको भेजेंगे, सभी करेंगे। हाँ, तो सभी को अपना घर, रूम या बाबा का कमरा जो भी आप सजाएंगे उसका फोटो निकालना और ग्रुप में डालना, ठीक है? ये पहला दिन हम सबको करना है, तो अभी से ही सारा प्लान करना और हम भी आपको भेजेंगे सारी चीजें। हाँ, एक में महाराष्ट्र दिन। हाँ, डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। जूम नहीं, ग्रुप में डालेंगे। जूम में तो आपको सिर्फ मीटिंग होगी, वो करके देंगे आप, आपको करके देंगे बाद में। हाँ, पहले सुन लो। तो बाकियों को तो जूम का आता ही होगा। हाँ, और ग्रुप एक बनाएंगे और ग्रुप में सारा हम रोज का होमवर्क डालेंगे। वो होमवर्क इसलिए है ताकि हमको याद रहे और हम करते रहे, और एक साथ सब मिलके करते हैं तो सबको मजा आता है। एक एक जन करता रहेगा तो इतना वो वातावरण नहीं बनता है, तो इसीलिए। और जैसे अभी बाकी के सब्जेक्ट है, हाँ, कौन से है बाकी के प्रोजेक्ट? अचानक वाला है एक, हाँ, और दूसरा अंतिम समय की तैयारी। तो ये सारे प्रोजेक्ट के सामने हमको खड़ा रहना है। हाँ, अपोजिट जैसे गेम होता है ना, तो सबको जरूरत है खुशी की। हाँ, अंतिम समय भी हमारा शरीर छूटे तो कैसे छूटे। हाँ, अगर ये साल भर में हमारा शरीर भी छूट जाए, हाँ, खुशी वाले साल में, तो कैसे चेहरा होगा? हाँ? वो कौन भेजेगा, वो तो चला गया। हाँ, मरते समय सेल्फी। होता है। हाँ, तो सभी को होमवर्क जरूर करना है, और सभी जिम्मेवार आत्माएं हैं। और हर मास के अंत में हम सभी हफ्ते में जैसे सुटेबल होगा वो डेट फिक्स करेंगे, हर महीने के लास्ट हफ्ते में। तो सभी प्रिपेयर रहना। और राकेश भाई भी कुछ अपने अनुभव से सबको बताने वाले हैं, और हमारे महेश भाई। हाँ, दीदी बता रहे हैं कि आप सबको ये जो फॉर्म मिला है ना, तो आप सबका बर्थ डेट, अलौकिक बर्थ डेट, कौन सा अलौकिक बर्थ डेट, इसमें जरूर लिखना नीचे। याद नहीं तो महीना तो भी लिखना, कौन से मास में आपका ईयर। तो आप सबको एक सरप्राइज, हाँ, दीदी ने कहा सबको विश करेंगे, तो आपका अलौकिक जन्मदिन। हाँ? हाँ? नीचे नीचे लिखो, नीचे है ना, नीचे ब्लैंक जगह, अलौकिक बर्थ डेट ऐसा लिख के। हाँ, या महीना डालो, साल डालो। हाँ? और जैसे उसमें बताया था कि कुछ 3-4 चीजें हैं कि अपने अपने सेंटर में लॉन्चिंग प्रोग्राम है, ये खुशी का जो द पावर ऑफ हैप्पीनेस है, तो इसमें बाहर के भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की सबको आवश्यकता है अभी। हाँ? हर कोई क्षेत्र में है, सबको हैप्पीनेस की आवश्यकता है। लोगों के पास पैसा है, ज्ञान है, पोस्ट है, पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन चेहरा लंबा है, उसको चौड़ा करना है। हाँ, तो आप सबको मालूम है, जानकी दादी को एक बार ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि बच्ची तुम्हारा चेहरा देख के लोगों को लगना चाहिए कौन मिला है। तो तब से पहले दादी ने कहा मेरा चेहरा तो एकदम गंभीर था, फिर तब से दादी ने पुरुषार्थ किया कि बाबा ने मुझे काम दिया कि चेहरे से दिखाई दे मुझे कौन मिला। तो तब से दादी का स्माइली का अभ्यास करते करते फिर दादी ने कहा मेरा अभी ऐसा ही हो गया है, चेहरा ही ऐसा हो गया कि अभी उसको उतारना चाहे तो अभी उतरता नहीं है। मना ऐसे इतनी प्रैक्टिस हम साल भर करें कि हमारा चेहरा ही ऐसा सुंदर हो जाए और ऑलवेज स्माइल वाला हो जाए। कठिनाई बहुत आएगी लेकिन हम सबको करना ही है। हाँ, पक्का वायदा है, करना ही है, या ही चेहरे उतरे हुए कईयों के। साल भर कैसे चलेगा? प्रोजेक्ट जी, तो अभी महेश भाई भी आप सबको बताएंगे स्टार्टर कैसे होता है, कि जैसे वो होता है ना हास्य क्लब, हास्य क्लब में जाते हैं तो स्टार्टर कैसे होता है, वैसे यहाँ से हमको अभी स्टार्ट करके, गाड़ी को स्टार्ट करके जाना है, ठीक है ना। अभी राकेश भाई अपना थोड़ा अनुभव भी सुनाएंगे, और हमारे महेंद्र भाई है अंबरनाथ के, उन हाँ फॉर्म जिनको नहीं मिला उनको देना। श्यामजी भाई हाथ खड़ा करेंगे तो 5-6 हैं, 10 करवा लेंगे तो चलेगा। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाने में बहुत सारा मटेरियल रेडी करने में मदद किया है, महेंद्र भाई और अंबरनाथ का ग्रुप है। तो सभी सुन रहे हैं, इन्होंने लक्ष्य रखा था कि मुझे खुश रहना है, कोई भी हालत में खुश रहना है। तो जब वो आ रहे थे अभी मधुबन में, आते आते इतनी कठिनाई आई कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, इतनी कठिनाई आई, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य रखा था कि मुझे, मैंने खुशी के प्रोजेक्ट में सब लिखा है और मुझे खुश रहना है। तो वो हम एक मिनट में सुनेंगे उनका अनुभव, उसके बाद राकेश भाई सुनाएंगे और फिर महेश भाई थोड़ा स्टार्ट कर देंगे गाड़ी को। महेंद्र भाई, अच्छा आप सभी को थोड़ा चलेगा, 1:30 बजे तक बैठेंगे, ठीक है, एक मिनट में सुनाना।
ओम शांति। जैसे हमने पुरुषार्थ के लिए सोचा कि हमें खुश रहना है, तो जैसे हम ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचे, 3:30 बजे उठकर 2 घंटे पहले ही हम ट्रेन में जाकर स्टेशन पर बैठे, तो वहां पर हमें एक भाई आकर बताया कि आपको मालूम है ट्रेन जो है वो सिर्फ सूरत तक जा रही है, क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो अहमदाबाद, दादर से अहमदाबाद और फिर साबरमती से आबू रोड की थी। तो उन्होंने पहले ही आके पास में आकर मुझे बताया कि आपको पता है कि ये जो ट्रेन है सिर्फ सूरत तक जा रही है। तो अब पहले तो मुझे पता था कि अभी तो कहीं ना कहीं उतरना ही पड़ेगा, तो फिर भी मैं कहा नहीं, मुझे तक अभी तक तो नहीं मालूम पड़ा, कोई मैसेज नहीं आया है। हाँ तब हाँ, तो मैं ये सोच के रखा कि अब तक तो खुशी हूँ। तो थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ से तो उसने आकर बैठा, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा भी आकर बोलता है आपको पता चला कि अपनी ट्रेन जो है ना सिर्फ वहीं तक जाएगी। तो मैं बोला हाँ, अभी इसी भाई ने बताया है कि ट्रेन सिर्फ सूरत तक जाएगी। तो मैं बोला ठीक है। इतनी देर में फिर तीसरा एक भाई आया, फिर मुझे बता रहा। तो जैसे सब मुझे ही आकर बता रहे हैं कि ट्रेन सिर्फ सूरत तक ही जाएंगे, फिर मुझे एक भाई ने बोला, तुम्हें बोला नहीं, अब मुझे पता चल गया है कि सूरत तक ही जाएंगे, देखें आगे क्या होता है। तो ट्रेन तो चल दी। अब ट्रेन में फिर जब सब लोग आने लगे, बैठ तो गए, फिर वो जब चाय वाला और ये सब देने आ गए तो वो भी आकर बोल रहा है कि भाई साहब ट्रेन सूरत तक ही जाने वाली है। तो मतलब ठीक है, चलो अभी ये भी बता दो, आपने ही बता दिया, बहुत अच्छी बात है, अब पक्का हो गया था कि ट्रेन सूरत तक ही जाएगी। फिर अब सूरत तक पहुंच गए, तो भीड़ तो सब के सब पता था कि सब ट्रेन खाली होने ही वाली है, तो ट्रेन खाली होगी, अब सब के सब उतर गए। सोचिए कि पूरी ट्रेन उतर गई, अब सबको कहीं ना कहीं अहमदाबाद की तरफ जाना होगा, किसी को बड़ौदा, तो भीड़ तो इतनी प्लेटफॉर्म पर हो गई थी, अब क्या करें। तो वो स्टेशन मास्टर को जाके पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है, आप एक ही ऑप्शन है कि आप बाहर एसटी है वहां से आप जा सकते हो। तो वहां से गए और हमारे पास 7 घंटा था और ट्रेन को पहुंचने में 5.5 घंटा लगता था। तो मैं बोला ठीक है, शायद कोई ना कोई बस वगैरह मिल जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो एसटी में, एसटी के लिए हम बाहर निकले तो आधा पौना घंटा उसी में चला गया। और हमको पता है कि एसटी की बस कैसे होती है, अब कितने देर में पहुंचाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन लेकिन जैसे वो एसटी की पहली बस आई अहमदाबाद के लिए तो वहां तो सब एक साथ चढ़ गए। अब उस चढ़ने के लिए तो कोई चांस ही नहीं मिला और बस देखकर ही ऐसा लग रहा था कि दुखी हो जाने जैसा लग रहा था, परंतु मैं सोचा चलो कहीं ना कहीं पहुंच तो जाएंगे, परंतु वो बस निकल गई। उसके बाद फिर एक बस आ गई तो उसमें चांस मिल गया बैठने के लिए, तो बैठ गए। अब वहां से वो बस पहुंचाते पहुंचाते 5.25 घंटे में पहुंचा दिया हमको अहमदाबाद तक। हाँ, अहमदाबाद तक पहुंचा दिया। और वहां से फिर साबरमती जाने के लिए भी कम से कम आधा घंटा लगता है, और मुझे किसने बताया कि 10 मिनट में पहुंच जाओगे, तो वहां पर भी मैं खुश हो गया कि हाँ तो चलो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो वहां पर वहां से ऑटो किया, तो ऑटो किया तो ऑटो वाले को पहुंचाया, देखो भाई मुझे 10 मिनट, मैंने पहले झूठ बोला कि भाई 10 मिनट मुझे पहले पहुंचाना क्योंकि ट्रेन इतने बजे की है, तो आप दौड़ाना पैसा जो भी आपको चाहिए वो ले लेना। तो उसने 200 बोला, तो हमने उसको 150 बार्गिन करके 150 किया कि भाई चलो वो भी 50 रुपया बचा लिया मैंने, और उसको बोला दौड़ाओ आप जितना भी हो सकता है। तो वो बेचारे ने कोशिश किया, लेकिन यहां तक पहुंचने तक ट्रेन निकल गई। समझ आया? तो वो वहां का टिकट का भी 200 भी गया, ट्रेन का भी पैसा गया, ये 150 भी गया। यहां आने के बाद देखा तो ट्रेन 5 मिनट के लिए चली गई। अब फिर वापस स्टेशन मास्टर के पास गया कि देखो भाई ऐसा हो गया है, अब इस टिकट का क्या करें, क्योंकि मेरा तो इससे कनेक्टेड था, तो अब क्या करें। तो बोले भाई ये ई टिकट है तो इसका कुछ नहीं हो सकेगा, मतलब ये इसका भी पैसा गया। चलो ठीक है, अब क्या करें। तो बोले अब एक ही ऑप्शन है कि भाई चलो मैं चेक करता हूं कि कहीं आपको मिल जाए टिकट। तो बोला ठीक है, अब एक ही टिकट उसमें बोला बचा है, एसी का है, थर्ड एसी का। तो बोला चलो वो भी ले लो। तो थर्ड एसी का टिकट लेके बैठ गया। अब 2.5 घंटा था, 7:30 की ट्रेन थी और 5 बजे का मैं बैठा था। 2.5 घंटा बैठने के बाद पता चला कि ट्रेन जो है वो 1.25 घंटा लेट आ रही है। अब वो पहले ट्रेन अगर 5 मिनट भी लेट होती तो ये मुझे मिल जाती, परंतु वो नहीं हुई और ये 1.25 घंटा लेट हो गई। हाँ, तो वहां पर ठीक है चलो वो भी गया। 1.25 घंटा बैठने के बाद ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद फिर कुछ 4 घंटा, यहाँ पर 3 घंटा लगता है, तो 1.5 घंटा तो कुछ नहीं हुआ, परंतु उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा लेटा और नींद आ गई, और नींद आ गई तो आप समझ सकते कहां पहुंचाऊंगा। परंतु कहीं नहीं पहुंचा, मैं सोया था, उतने में आबू रोड पे स्टेशन पे रुक गई थी और जाने की तैयारी थी, इतने में एक माता आके बोल रही कि ये टिकट, ये सीट तो मेरी है। हाँ भाई साहब आप उठो, ये सीट मेरी है। तो मैं बोला आप कहाँ पे है? तो बोला आबू रोड। तो मैं उसको हाँ भाई, मैं आपका ही है, मैं तो उतर ही रहा हूँ। फिर वो उतर गया। अब सिचुएशन को हम देखते हैं, क्योंकि खुशी गवाने के लिए सिचुएशन बनी थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमने लिया था इसीलिए। अब हम सिचुएशन देखें कि इसका हम खुशी से कैसे लिए। तो जब हम दादर से ट्रेन मिस हो गई थी हमारी, उसके बाद जब वो, क्योंकि वो जो सीट थी वो कैसी थी, हमको वो चेयर जो बोलते हैं, हाँ सेकंड सीट होती है वो मिली थी, और बैठने के लिए भी एकदम कंफर्ट नहीं था, वैसी थी। इसलिए बाबा ने मुझे सूरत में ही उतार दिया था, क्योंकि अहमदाबाद तो बहुत ही दूर था, तो वहीं उतार दिया। उसके बाद जब मैं यहां पर पहुंचा सूरत में, तो पहली बस जो छूट गई थी वो कैसी थी, एसटी की बस थी। तो वो एसटी की बस में भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो वहां पर भी वो पहली बस चली गई। उसके बाद दूसरी बस जो मुझे मिली एसटी की बस थी, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि वो एसटी की बस थी,
वोल्वो से भी अच्छी बस, वो जैसे कि बस डायरेक्ट यहीं पर पहली बस आई हो वैसी एकदम न्यू बस थी। अब वो बस मुझे मिली, वो बस आने के बाद भी यहाँ पर भी आया तो मुझे कौन सी बस ट्रेन मिली, टिकट जो मिली वो भी एसी की मिली। तो अगर हम सिचुएशन को समझ लेते हैं और खुशी खुशी को अपना लेते हैं तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो हर जगह मुझे फायदा भी होते ही गया और मुझे खुशी मेरी जो है बनी रही। ओम शांति।
राकेश।
ओम शांति। ओम शांति। है ना, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। है ना, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें एक टॉपिक है पॉजिटिविटी का, है ना? तो हम पॉजिटिव कैसे रहे, तो बहुत सारे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर भी हुए, बहुत सुंदर सुंदर आंसर्स भी हमें मिले। है ना, तो मैं कुछ दो तीन एग्जांपल देता हूँ, भले वो लौकिक के है लेकिन बहुत काम की चीज है। ना, तो आप सभी जानते हैं जो हमारे है ना भारतवर्ष में है ना सिनेमा के महानायक है, कौन है? अमिताभ बच्चन। है ना, वो डून स्कूल में पढ़ते थे, डेहराडून में। है ना, तो जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक नाटक में भाग लिया। है ना, तो लंबे थे ना, कद में बहुत लंबे थे, तो जब नाटक में भाग लिया तो उनको कुछ रोल देना था, तो कुछ दिन वो रोल मिला उनको और फिर वो उनके शायद एक्टिंग की वजह से या जो भी कारण था उनका रोल निकाला गया। है ना, तो वो बहुत बड़े दुखी हुए वो। है ना, तो उन्हीं दिनों में उनके पिताजी उनके पास आए, हरिवंश राय बच्चन, बहुत बड़े हिंदी के कवि। तो जब उनसे अमिताभ बच्चन अपनी बात शेयर कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर एक नुस्खा उनको बताया जीवन का, जो उनके हर जीवन के हर पहलू में उनको काम आया। तो कहा, मन का हो तो अच्छा है ना, माना हम जो सोच रहे हैं अगर वो हो रहा है तो बहुत माना अच्छा है, लेकिन मन का न हो तो बहुत अच्छा है ना। तो ये एक सीख के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। दूसरी एक पॉजिटिविटी की बात है, अलेक्जेंडर द ग्रेट को आप सब जानते हैं, है ना, सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट भी है ना सारे संसार को जीतने चला था। है ना, तो वो जब ऑस्ट्रिया वहां नजदीक वाला देश था उस पर उसने हमला करना था उसको, तो जब उसके बॉर्डर पर आया वो अपने सैनिकों के साथ, है ना, तो जैसे ही बॉर्डर पे आया तो वो घोड़े से गिर गया। है ना, तो गिर गया तो जमीन पर गिरा, तो सब जो उसके साथी थे जो उसके एकदम नजदीक वाले थे तो उन्होंने कहा कि ये अपशकुन है ना, ये बैड ओमेन है ना, कि हमें नहीं जाना चाहिए अभी क्योंकि हम हार सकते हैं क्योंकि आप गिर गए। है ना, तो उसने कहा नहीं, है ना, ये बैड अपशकुन नहीं है, ये तो धरती माँ ने मुझे आलिंगन दिया है ना, और वो मेरा स्वागत कर रही है। और जब उसने ये कहा और उनको लेकर के वो जब गया तो पूरे ऑस्ट्रिया को जीत के लाया। सो हम क्या सोचते हैं उस पर बहुत निर्भर होता है उस समय, है ना। तो बहुत सारे लोग आपके आसपास भी होंगे, है ना, आपको सलाह भी देंगे अच्छी अच्छी, है ना, लेकिन हमारा भी कुछ है ना इनर जो पावर है वो अगर हम यूज करते हैं पॉजिटिविटी का तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जब हमारा ये खुशी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके ऊपर भी पहले थोड़ा सा काम हो चुका है। हमारे जो आदरणीय मराठे भाई जो थे, अनुरूप भाई मराठे, तो उन्होंने खुशी मीटर बनाया है ना, तो आप सबको वो मिलेगा शाम तक, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू से वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन आपको शाम को वो मिल जाएगा। तो हमारी कितनी खुशी है हम माप सकते हैं, है ना, तो रोज अगर हम उसको नापेंगे तो मुझे लगता है कि है ना हमारी रोज क्या खुशी है हमारी बढ़ रही है घट रही है ना, तो वो भी हम उसको है ना चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी खुशी कैसे नापते हैं तो उसका एक सिंपल सा उदाहरण है या उसका एक फॉर्मूला है ना, खुशी इज इक्वल टू है ना सकारात्मक या श्रेष्ठ विचार डिवाइडेड बाय नकारात्मक या व्यर्थ विचार। क्या है, हम जितने सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स करते हैं या श्रेष्ठ विचार करते हैं, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, और डिवाइडेड बाय क्या है, निगेटिव थॉट्स है ना, या व्यर्थ विचार। निगेटिव माना व्यर्थ, माना आपके वेस्ट थॉट्स है ना, बहुत सारे होते हैं। तो वो दोनों का जो रेशो है उसी पर आपकी खुशी निर्भर है। तो शिव बाबा की खुशी कितनी है मालूम है आपको, कितने है ना? बाबा के सारे विचार कैसे है ना? वैसे तो बाबा विचार ही नहीं करते ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या नहीं होते। तो बाबा की जो खुशी है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि नीचे क्या है, निगेटिव और वेस्ट थॉट, वो जीरो है ना। तो किसी को भी आप डिवाइड करो जीरो से, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा है ना। तो हमें भी वो इन्फिनिटी तक जाना है ना। तो पॉजिटिव विचार कैसे करें, तो इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ना। जब अव्यक्त बाप दादा मधुबन में आते थे तो पांडव भवन में भी है ना, एक फॉरेनर्स का ग्रुप मिल रहा था उनको है ना। तो सभी मिल रहे थे, तो उसमें एक नए भाई थे, साल भर उन्होंने अपनी पवित्रता को धारण करके है ना वो उस ग्रुप में आए थे है ना। और अव्यक्त बाबा हम जानते हैं, दादी गुलजार जी के तन में जब प्रवेश होते हैं और अपनी वाणी चलाते है ना, तो भाई को जरा है ना डाउट आने लगा अपने आप में है ना, क्योंकि है ना बाबा का साधारण रूप देख करके और दादी गुलजार जी के तन में आकर के, तो भगवान ऐसे कैसे आ सकता है। तो उसको थोड़ा सा मन में विचार आने लगे। तो एक कोने में बैठा रहा वो, तो अलग अलग ग्रुप आते रहे, मिलते रहे सब है ना, लगभग 8-10 घंटा हो गया है ना। और वो सुन रहा था बाबा क्या कह रहे हैं, वो सुन रहा था वो है ना। और तब उसको 8-10 घंटे के बाद ये रियलाइज हुआ है ना, भले वो दिखने में साधारण है ना दिख रहे हैं है ना, लेकिन वो जो भी बात कर रहे, जिससे भी बात कर रहे हैं, उसमें एक भी निगेटिव शब्द या निगेटिविटी नहीं है। तो भगवान ही ऐसा है व्यक्ति जो इतने पॉजिटिव और श्रेष्ठ विचार कर सकता है। तो तब उसको रियलाइज हुआ कि यह सचमुच भगवान ही है, और कोई इंसान हो ही नहीं सकता कि जो हरे के बारे में, जो भी उसके सामने आ रहा है उसके बारे में वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो हमें उससे एक ही सीख लेनी चाहिए कि हमें भी क्या बनना है, हमारी खुशी कब तक बरकरार रहेगी, कब तक बरकरार रहेगी, जब हमें हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आए क्या होना चाहिए, हमारे मन में तो श्रेष्ठ और शुभ संकल्प ही होने चाहिए और मुख से भी वैसे ही शब्द निकलने चाहिए, तो हम बाप समान बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है, 8 घंटा कोई इस प्रकार से अगर करते हैं, तो हम पहले तो 1 मिनट से करें शुरुआत है ना, 2 मिनट, फिर उसको बढ़ाते जाए। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिविटी भी अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अभी हमारी खुशी क्यों गुम हो जाती है, तो बहुत सारे कारण आए है ना। तो उसमें मेजर कारण क्या है कि हम अपने आप को जानते ही नहीं है ठीक से। कई बार हम कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे से है ना, कई बार हमें ईर्ष्या आती है किसी से, क्योंकि इनको कुछ मिला है मुझे तो नहीं मिला है ना। लेकिन भगवान जो है ना वो कैसा है भगवान, वो सभी को समान चांस देता है ना, हर एक को दिया हुआ है, हर एक को उतना ही चांस है ब्रह्मा बाप समान बनने का, नंबर वन लेने का। लेकिन वो हमारे पुरुषार्थ के कारण ही हमारे नंबर बन रहे है ना। तो उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए, तो लगभग 8 से 9 महीने हर महीने हम एक एक पॉइंट को उसको अच्छी तरह से।
2 मिनट रुकना सभी,
तो मैं आपको बताता हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि मैं कौन हूँ, तो आई एम यूनिक है ना। हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है बारीक। हाँ आई एम यूनिक, तो हम कैसे हैं सभी, यूनिक है ना, हर कोई अलग है ना या सेम है ना। आत्मा दिखने में सेम है लेकिन हर एक के अपने है ना रोल है। आई एम लाइट, तो 2 प्रकार के लाइट है ना, एक आत्मा लाइट और हम स्थिति में भी कैसे हैं लाइट। आई एम इटर्नल, हम मरते हैं क्या कभी, अविनाशी है ना, तो हम मरते ही नहीं है तो हमें खुशी। ओके आई एम कनेक्टेड, आई एम इक्वल, आई एम पावरफुल, आई एम मास्टर, आई एम वैल्यूएबल एंड आई एम क्रिएटिव है ना। तो ये इतने सारे श्रेष्ठ विचारों पर अगर हम काम करेंगे तो आपको कभी भी किसी से ना ईर्ष्या होगी। हाँ मिलेगा,
मिलेगा ये सब पॉइंट सब भेजेंगे।
हाँ। ओम शांति।
अच्छा, थैंक यू। अच्छा एक सूचना है, ये QR कोड का जो दिया है इसमें जाते समय या वहाँ पे रखेंगे कहाँ पे?
अभी जाते समय यहाँ पे जितने उतने कर सकते
हैं। इसको आप मोबाइल में गूगल का खोलेंगे ना तो उसमें वो आता है फोटो, उससे आप स्कैन करेंगे। नहीं आता है व्हाट्सएप के सेटिंग में?
व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ये QR कोड से, आप स्कैन कर
व्हाट्सएप के कैमरा में जाने का। ठीक है, सबको मालूम है ना कैसे जाना है, तो जिनको मालूम नहीं हो रुक जाना, जिनको मालूम है वो इसमें स्कैन करके आप तुरंत ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ये अपने ग्रुप का है तो हैप्पीनेस के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, नहीं तो भी कोई चिंता नहीं करना, सबका फॉर्म आया है, आप सबको ग्रुप में ऐड करेंगे और आपके सेंटर में जाके आप ये सब बताएंगे कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट लिया है और क्या क्या करना है। तो सेंटर के भाई बहनों को भी इस ग्रुप में ऐड करना जो जो इसमें भाग लेंगे, और जब जूम की मीटिंग होती है तो आप सेंटर में भी वो ऑनलाइन तभी कर सकते हैं ताकि क्लास के बाद भी सभी भाई बहने सुन सकेंगे। हाँ आओ महेश भाई, महेश भाई दो मिनट में वो स्टार्टर कर रहे हैं, तब तक ये QR कोड से आप लोग पास करते जाना। और
एक मिनट, ओम शांति,
जिन्होंने फॉर्म नहीं दिया वो इधर सबमिट कर देना।
एक फॉर्म है राजनगर की बहन रेखा राय, जिन्होंने अपना नंबर नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर, रेखा राय बहन, राजनगर कहाँ? नहीं फॉर्म ही नहीं मिला उनको, तो फॉर्म ही नहीं मिला। हाँ जी रेखा राय बहन कौन है?
ओम शांति, ओम शांति। एक दो मिनट में, जैसे आपने लाफिंग क्लब देखा रहेगा या सुना रहेगा, तो उसमें जो खुशी का इजहार, वैसे हम बाबा के बच्चे जो रमणीकता के सागर है उसके बच्चे हैं, तो बाबा भी वैसे रमणीकता से ही ये करता है। कई अपने अव्यक्त वाणियों में भी सुना रहेगा कि जो बाबा है वो वतन से माना बच्चों को देखता है कि कैसे कैसे उनके मूड होते हैं या क्या होते हैं, तो ऐसे ही लाफिंग क्लब में भी क्या करते हैं लोग, जो माना खुशी को इजहार करने के लिए एक स्टार्टर होता है। जैसे ठंडी के दिनों में जब गाड़ी पहले स्टार्ट करते थे तो पहला जो सेल्फ लगाते हैं, तो उस रीति से वो खुशी का इजहार करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे गाड़ी स्टार्ट होता है उस रीति से वो खुशी का भी इजहार होता है। तो एक थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल वो करके दिखाऊंगा कैसे वो करते हैं करके। स्टार्टर तो पहले शुरुआत जैसे हम सेल्फ लगाते हैं गाड़ी को, हा, 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 माना वो उन्होंने एक्सीलेटर पे पावर रख दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो ये खुशी का इस रीति से थोड़ा स्टार्टर ऐसे लाफिंग क्लब में वो करते हैं। ओम शांति, थैंक यू।